भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 36 आगे। सुखम तुदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तद् अग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने दोनों श्लोकों को साथ में लिया है, इसलिए मैंने दोनों को क्लब करके रखा है। अब हम इसको पढ़ते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। दुखांतम क्या लिखा है, दुखांतम निगच्छति, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम भक्तों के लिए। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। भगवान अब तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सुख ही सभी कर्मों का उद्देश्य होता है। ये बात किसको समझ में आई? बड़ा ही सुंदर बात है। आप माइक लेके बोलिए, बहुत इस लाइन पे आप लोग अपना कुछ टिप्पणी करिए माइक लेकर करके। यस, दशरथी प्रभु को दीजिए माइक और एक माइक इधर प्रस्तुत कीजिए। हाँ जी, ये लाइन मैम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी कार्यों का उद्देश्य सुख होता है। हाँ जी,
भगवान तीन प्रकार के सुखों का कर रहे हैं उपयोग, क्योंकि बता रहे हैं तामसिक सुख होते हैं, रास्तिक सुख होते हैं।
वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं खाली इस बात को पूछ रहा हूँ कि सभी कर्मों का उद्देश्य सुख होता है, इस पे
व्यक्ति कोई भी जॉब करना चाहे, सबको कुछ भी अचीवमेंट करना चाहता है लाइव अंतोगत, तो उसको सुख चाहिए।
यस, क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि
क्यों?
जीव का स्वरूप है,
वेरी नाइस, जीव का स्वरूप है आनंदमयता। दुख में रहना ये हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन रजगुण तमोगुण सतोगुण के अनुसार जब हमारी चेतना दूषित हो जाएगी तो हमारे सुख का इंग्लिश में कहेंगे कंसेप्शन, धारणा अलग अलग होगी। और प्राय लोग कभी कहते हैं कि सबका सुख एक बराबर है, एक बराबर नहीं है। प्रभुपाद जी की आप पुस्तक पढ़ें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कृष्ण की ओर, और पहले ही चैप्टर में प्रभुपाद बोलते हैं कि एक पेड़ बाहर खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं। अब इंसान को अगर आप बाहर खड़ा कर दें और कहें कि भाई आप खड़े रहिए बढ़िया से, तो आप नहीं कहेंगे कि हम सुखी हैं। अब ये बताइए कि पेड़ बाहर खड़ा होकर कि सुखी है, इसका प्रमाण क्या है?
फल फूल रहा है।
हाँ,
पत्तियां उग रही हैं।
यस, पत्तियां उग रही हैं, हरा हरा है बिल्कुल, और वो मरना नहीं चाहता है। तब ये देख सकते हैं कि सुख की धारणा व्यक्ति किस गुण से प्रभावित है उस पर निर्भर करती।
इंद्रदेवी सुअर बन जाते हैं, वो वापस जाना नहीं चाहते।
यस यस, तो आप देख सकते हैं कि माया बड़ी प्रबल है और हमारे सुख की धारणा को परिवर्तित कर देती। तो इसलिए सुख ही उद्देश्य है सभी कर्मों का, इसलिए भगवान समझा रहे हैं। अभ्यासाद रमते से शुरू होते हुए डेढ़ श्लोकों में, अर्थात 36 का सेकेंड पार्ट और 37 के पूरा श्लोक में, वह सतोगुण सुख का वर्णन करेंगे। यह वह सुख जिसमें संतोष का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। ये लाइन समझिए, जब हम बार बार योग अभ्यास करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, धृति का जो सात्विक धृति है वह योगेना व्यभिचारण्य अव्यभिचारी योग में समर्पित रहती, ने हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो बार बार अभ्यास से क्या उत्पन्न होगा? संतोष। संतोष का अर्थ है कामनाओं का निर्मूलन, भौतिक कामनाओं का निर्मूलन हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? अभ्यास से। ये बात महत्वपूर्ण है, इससे संतोष जनरल कह सकते हैं, सुख मिलता है। जैसे भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अशांतस्य ही कुतः सुखम, जिसके हृदय में भौतिक कामनाएं हैं वह व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? तो यहां पे हमने क्या सीखा, अगर सत्वगुण सुख चाहिए तो व्यक्ति को अभ्यास करना होगा, और अभ्यास का मतलब ही है कर्तव्य बुद्धि होना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति का कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी वह अभ्यास नहीं कर सकता। आज अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी से हृदय का जो शुद्धिकरण होगा तो संतोष का निर्माण होगा, शुद्धियां होगी जाएंगी। ठीक है, अभी अंतर कैसे है रजोगुण में, यानी कि संतोष का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है, ना कि इंद्रिय विषयों के द्वारा उत्पन्न एक आकस्मिक सुख, ऐसा सतोगुण होता है। ये अंतर इस लाइन को समझिए, अर्थ ये है कि रजोगुणी सुख में इंद्रियों के विषयों का संपर्क इंद्रियों से होता है, आंखों का रूप होता है, कान का कुछ और होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार से विषय होते हैं और उनको संपर्क करने से कुछ सुख मिलता है और उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप प्राय लोग बोल, आपने लोगों ने पूछा भी होगा, हम लोग भी कई बार पूछते हैं, प्रभु जी भगवान को देखते हैं तो वो स्मृति तो हमारी रहती नहीं है स्वरूप की, और इस जगत के रूपों की स्मृति हमेशा बनी, कई सालों तक रहती है तो बनी रहती है। कुछ आप भौतिक वस्तु शब्द सुन लें तो बड़ा याद हो जाता है, तुरंत पकड़ लेता है मन, लेकिन अगर भागवत का है शब्द है, कोई गीता का शब्द है तो बहुत देर में याद होता है या याद ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बात यहां पे बोल रहे हैं कि अंतर दिखा रहे हैं कि रजोगुणी सुख से किस प्रकार से अलग है। तो हमने पहली चीज यहां पे क्या सीख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, सतोगुण का सुख श्रीनाथ जी कैसे उत्पन्न होगा। हाँ बताइए, सतोगुण का सुख कैसे, मेरी हिंदी समझ लेते हैं, सतोगुण का सुख कैसे उत्पन्न होगा। मेरे ख्याल से भाषा का प्रॉब्लम है, हिंदी आप समझते नहीं, कोई बात समझते हैं। और बताइए, कोई समझ में आ रहा है किसी को, सतोगुण का सुख का आधार क्या है। पहला चीज अभ्यास, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। ऐसे सुख का आनंद लेते हुए व्यक्ति संसार को पार कर जाता है, अर्थात दुखांतम च निगच्छति। देखिए, भक्ति में ऐसा नहीं कि केवल कष्ट ही कष्ट है, हम सीधे भक्ति का ले रहे हैं अर्थ, तो जब भक्ति करते हैं तो जैसे जैसे हम सतोगुण में स्थित होते हैं, सतोगुण का उदय होता है हृदय में, तो हमें भक्ति करना अच्छा लगता है। इस चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब सतोगुण में भक्त स्थित हो जाता है, भगवान की कथा सुनते सुनते, तो उसको भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है और वह प्रभु जी बुलाइए, श्री नाम प्रभु, यू कैन डू समथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम, बट इन द क्लास यू हैव टू बी अटेंटिव, वी आर नॉट फोर्स टू सिट हियर, ओके। सो तो इस प्रकार से यू मे जस्ट गो ऑल्सो इफ यू डोंट वॉन्ट, बट इट जस्ट डिस्टर्ब्स माई फ्लो ऑफ थॉट, ओके। क्या बात कर रहे थे, तो आज हम सतोगुण में स्थित होते हैं तब हमको भक्ति करना अच्छा लगता है और यही स्थिति कहलाती है निष्ठा की। प्रेम की बात नहीं कर रहे, अनर्थ निवृत्ति में रजोगुण तमोगुण से मिक्स रहते हैं तो कभी अच्छा लगता है कभी नहीं अच्छा लगता। निष्ठा मतलब मुख्यतः प्रायः रजोगुण तमोगुण नष्ट हो चुका है और सतोगुण में व्यक्ति स्थित हुआ है तो सुखी हो रहा है, तो इसीलिए वह सुख भी भोग रहा है। सुख भोगने का मतलब भक्ति कर रहा है, अच्छा लग रहा है और साथ साथ वह पार होता चला जा रहा है। और यह भी ध्यान देना चाहिए, हमने पहले चर्चा किया था भी पिछले वाले श्लोकों में, कि उसको पता है कि मंधन और मोक्ष क्या प्रदान करता है, तो जो सत्वगुण के कार्य हैं वो जो शुरुआत में कड़वे लग रहे थे अब उसको अच्छे लगने लगे हैं और साथ साथ वो कार्य उसको मुक्त करते चले जाएंगे। सिंपल, ठीक है। यस,
सुख को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई आंतरिक सुख की बात, क्योंकि अगर बाहरी रूप से देखें,
अभी आने वाला है, आत्मबुद्धि प्रसाद जम, शुरुआत में यह यत्तद अग्रे विषमेव, अर्थात जहर की तरह लगता है जिसमें बहुत सारे कष्ट भरे होते हैं। क्या आपको ये सब अनुभव है? सभी को अनुभव है, सुबह उठना, नाम जप करना बड़ा भारी लगता है, लेकिन आपके लिए नहीं था ये। आपको तो कभी जप में नींद हो ना आई, कभी कभी स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ा, हम देख सकते हैं कि नहीं, इंद्रियों को संयम करना, मन को संयम करना, और क्यों कष्ट है वो भी बताएंगे, बहुत सुंदर उसका है, देखिए पढ़ते सुनते जाइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है ना। आप अगर बैठे पहले दिन बैठे और बस हरे कृष्ण चालू किया और आपको मालूम ही नहीं चला कि 16 माला कब हो गया, यदि आप सोए ना तो तो फिर कोई दिक्कत होती, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होती। सभी भक्त लोग कभी बोलते हैं प्रभु जी प्रसाद खाने में दिक्कत आ रही है, आज तक कभी भागवत क्लास में ऐसा कोई प्रश्न किया गया? कभी कोई प्रश्न नहीं आता कि प्रसाद खाने में दिक्कत आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी नाम जप में मन क्यों नहीं लगता है, भोग की वासनाएं क्यों आती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। तो हम देख रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं, इसलिए विषम में कठिन है। आप देख रहे हैं ना कि हमको पता है कि ये करना चाहिए और हमारे मन को भी पता है ये करना चाहिए, लेकिन वो मानता नहीं है कि ये करना चाहिए। सिंपल सी बात है, त्रिनादपि सुनिचिना होना चाहिए. कहां होते हैं बताइए. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, 100% यू आर रॉन्ग. आई हैव नेवर बीन रॉन्ग. जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं कभी गलत हुआ ही नहीं. तो कहां है ना, आप देख रहे हैं ना अंतर. अपने को जगत का केंद्र मान रहे हैं, सब मन की वजह से तो हो रहा है ना, और कहां से हो रहा है. तो ये मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है. सब संस्कारों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक व्यक्ति के रूप में अभी प्रकट नहीं किया है. लेकिन बाद में यह बहुत मीठा हो जाता है, जैसे अमृत की गिरती हुई धारा जब व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परिणामे जब वह आत्मा को शरीर से भिन्न रूप में प्रकट देख पाता है. अभी मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था, तो कोई सपने में देख रहा था कोई व्यक्ति मेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फिर नहीं हो रही है, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर नहीं हो रही है, फिर और बीच बीच में नींद खुलती थी, फिर मैं सो जाता था, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, फिर नहीं हो रही है. इसी प्रकार से हम वो सपने की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है. उसी प्रकार से हम लोग जब तक अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक हमारी समस्या नहीं सुधरने वाली है, क्योंकि यही समस्या है. मैं समझा रहा हूं, जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपने आप को पूरी तरह से अनुभव कर लेगा, या जितनी मात्रा में अनुभव कर लेगा, उसे भक्ति अच्छी लगने लगेगी. प्रभुपाद जी बहुत सिंपल वे में बताते हैं इसको, कि कौन व्यक्ति समझ पाएगा कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, जिसको ये साक्षात्कार हो गया है कि वह शरीर से भिन्न है, शुद्ध आत्मा है. जो देहिक चेतना में है वो समझ ही नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है. अब कुछ उसके लिए कुछ करना नहीं है, करना यही है, बार बार अभ्यास करना है. जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर आत्मा अपने गुणों को वापस प्रकट करेगी और समझ पाएंगे कि हम शरीर से भिन्न है. आप सोचिए, अगर केवल यही साक्षात्कार हो जाए, वैसे तो बहुत बड़े बात साक्षात्कार है कि हम शरीर नहीं है, तो जीवन में कुछ प्रॉब्लम रहेगी क्या? विचार कीजिए कभी. तो क्यों हम इतना सारा सुनते हैं और घूम फिर के बात ये आ जाती है कि हम फिर उसी में बात में फंस जाते हैं, उसकी निंदा, उसकी चुगली, ये वो, और ये भूल जाते हैं कि हम शरीर है. सॉरी, हाँ, ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है. देखिए, मुंह से निकल ही गया. हम ये नहीं भूलते. बहुत अच्छा प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे कि हम पूरा जीवन ऐसे बिताते हैं जैसे हम शरीर हों, और प्रचार करते हैं कि हम शरीर नहीं है. तो ये सारी चीजें कठिनाई है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भक्ति के प्रभाव से परिणाम मतलब अगर अभ्यास करता रहेगा तो धीरे धीरे इस चेतना से वह मुक्त हो जाएगा. यह सतोगुण का सुख उस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है जो आत्मा पर केंद्रित होने के कारण शुद्ध हो गई होगी. अब यहां पे आत्मा करती नहीं कि हम बैठ के चिंतन करते रहे, हमारा ये प्रोसेस नहीं है. भक्ति का प्रोसेस क्या है? हम भगवान का चिंतन करते हैं, उससे अपने आप ही आत्मा की शुद्धि हो जाती है. इस चीज को भगवान गीता में बोलते हैं मय्येव मन आदत्स्व. वहां पे आचार्यगण समझाते हैं कि व्यक्ति को आत्मा का चिंतन करने के बजाय भगवान के चिंतन में लगना चाहिए, और उससे अपने आप ही आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है. जैसे सूर्य उदित होता है तो आप सूर्य को भी देखते हो और अपने आप को भी देख लेते, अलग से अपने को देखने की आवश्यकता नहीं. और इसको अभी हमने योगिना अव्यभिचारिण्य में भी देखा था. शुद्धता का अर्थ है भौतिक विषयों के संपर्क से होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण का पूरी तरह से उन्मूलन. ये समझ में आ रहा है? भौतिक विषयों के संपर्क से क्या प्रदूषण होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब जब सफाई हो गई तो फिर सुख शांति मिल जाएगी. बहुत इजी है, isn't it? इजी है परिणाम, प्रोसेस इजी नहीं है. क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको डिस्टर्ब करते रहेंगे. आप देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि हमारा मन नाम में नहीं लगता है, तो मन कहां जा रहा है? विषय में जा रहा है. तो दिक्कत है कि नहीं? उसे वापस खींच के लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता? लेकिन जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जा रहे हैं तो फिर ये सब समाप्त भी हो रहा है, isn't it? तो अब जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर आप सुख रहेंगे. समाधि का अर्थ क्या है? आपकी धी, आपका बुद्धि भगवान में जा रही है और कहीं नहीं जा रही. इसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं. यदि हमको प्रजल्प बहुत खराब लग रहा है, दुनिया की बातें, कोई निंदा चुगली कर रहा है तो हमें खराब लग रहा है, तो मतलब अब हमारे हृदय से गंदगी साफ हुई है, इसलिए हमको वो बातें पसंद नहीं आ रही हैं जो हमारे चेतना को प्रदूषित करें. और उससे पहले शुरुआत में व्यक्ति के कान टर्न करके खड़े जाते, अच्छा, और इससे क्या होगा? अब देखो, अब इसी चीज को देख लीजिए, किसी की निंदा चुगली सुनना ये रजोगुणी कार्य है कि नहीं, तुरंत बहुत अच्छा लगेगा, बाद में कैसा लगता है, क्यों सुना मैंने, मेरा चित्त खराब हुआ, इजंट इट, यस। तो इस प्रकार से हम जब धीरे धीरे प्रगति करेंगे तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ये सब हमारे विषय के संयोग मात्र है, थोड़ा थोड़ा सुख मिल सकता है, बाद में फिर हमारा चित्त खराब होगा। तो इसलिए दृढ़ता से व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे तो ये भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, बाद में जाकर के बहुत सुख मिलने वाला है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए, दशरथी प्रभु पढ़िए।
हे बद्ध जीव भौतिक सुख, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्चित चर्वणा करता है।
चर्वित चर्वण, इसका अर्थ बताइए अनंत कृष्ण प्रभु। चलिए अनुपम कृष्ण के पास माइक है, पहले इनको बताएं चर्वित चर्वण का अर्थ क्या है।
चुइंग द च्यूड,
ये तो इंग्लिश बता दिया, इसका अर्थ क्या है
वो चबाना,
उसके बाद कोई मान लीजिए उड़िया में बोल देंगे वो, उसके उसके बाद कोई मराठी में बोल देगा, अरे भाई इसका अर्थ तो बताइए क्या है, इसका अर्थ चर्वित चर्वण का अर्थ क्या है।
ये विषय सुख हम बार बार,
अरे भाई चबाए हुए कुछ पूरा चबाना समझ में आ रहा है।
विषय सुख जो हमारे हैं, जो संसार के विषय सुख हैं, स्त्री का सुख, धन का सुख, ये सुख ये हम बार बार हर जन्म में, चाहे जिस योनि में रहे, हमने जो है इसको भोगा है।
यस,
और बार बार हमें इसकी लालसा रहती है कि हम इसको जो है भोगें, और इसी कारण हमारा जन्म होता है, इसी को कहा जा रहा है
चर्वित चर्वण। प्रयास कर रहा है बार बार इसी भौतिक जगत में खुश होने का।
यस, और इसको उदाहरण दिया जाता है कि कोई सोचे कि बम्बू गन्ना और बम्बू एक ऐसा लगता है, तो बैंबू को चबाए बार बार तो उससे ऐसा नहीं है कि उसको सुख मिलेगा, केवल दांत से खून निकलेगा, उस खून का आस्वादन करता है वो और सोचता है कि मैं सुखी हो रहा
हूं। उठ है ना जो,
और आप देखेंगे कि भक्त लोग क्या चर्वित चर्वण नहीं करते,
करते
लेकिन वो, लेकिन वो सच्चा रस का स्थान है भाई, बार बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हो, लेकिन उसमें रस निकल रहा है। बोलना कुछ चाहते हैं? यस,
भक्ति की जो चीजें होती है ना वो चंदन की तरफ, जितना घिसते उतना महक।
वेरी नाइस, कितना सुंदर उन्होंने बात बोली कि जितना घिसेंगे उतना और आपको सुख मिलेगा। इस चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बात बोलते हैं, मस्क मस्क क्या बोलते हैं उसको, मस्क डियर हिंदी में क्या,
कस्तूरी
कस्तूरी कस्तूरी को जितना घिसा जाता है उतना वो और खुशबू उसकी बढ़ जाती। तो उसी प्रकार से भगवद गीता के श्लोक हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लो हम फिर से भगवद गीता चालू करेंगे कहेंगे अरे प्रभु जी आपने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार उसको अनुभव करेंगे नया अद्भुत फ्रेशनेस हो रहती है। तो चर्व चर्वण नहीं है उसमें, वाकई रस है। ठीक है, आगे पढ़िए, आप पढ़ लिए जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए।
लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के
अंतर्गत, लोग की भोग है,
ऐसे भोगों के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनर्वृत्ति है और उसमें वास्तविक
कृष्ण भावनामृत
का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तत्कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है।
श्री प्रभुपाद जी एक बार एक पार्क में जा रहे थे, रोज ही पार्क में वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और वो एक क्लॉकवाइज घूमते थे, मतलब ऐसे ऐसे एक दिशा में घूमते थे। एक दिन वो उल्टा घूम रहे थे तो उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद जी कुछ अलग लग रहा है। तो प्रभुपाद कहते यही है, जन्म जन्मांतर तुम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहे और यही आहार निद्रा भय मैथुन भोग रहे हो, तो हर बार तुम्हें लगता कुछ अलग है, थोड़ा अच्छा कुत्ते के रूप में कुछ अलग किया, थोड़ा कुछ बिल्ली के रूप में अलग किया, काम तुम वही कर रहे। तो इसलिए आवृत्ति मूलक सुख पे मैं बोल रहा था, ये सब वही है। और एक अद्भुत बात यह है कि इसकी सुख देने की क्षमता बहुत कम है, बल्कि उतना ही है जितना कुत्ते को आहार निद्रा भय मैथुन में सुख मिल रहा है उतना इंसान को मिल रहा है। तो इंसान को उन आवृत्ति मूलक सुखों में इन्वेस्ट अपनी एनर्जी, इन्वेस्ट का मतलब निवेशित अपनी शक्ति को नहीं करना चाहिए कि सुख एक जानवर के समान ही मिलेगा। हाँ जी,
जैसे उसने मनुष्य के शरीर में भोग भोगा तो वो कुत्ते के शरीर में उसको ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ये भोग भोगा है तो
नहीं 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 माया से याद नहीं रखते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं रहता क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए हम पिछले जन्म में स्त्री थे, उससे पहले कुत्ते थे, उससे पहले बंदर थे, अगर सारा कुछ याद हो जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कुत्ता हैं कि बंदर हैं कि स्त्री हैं या पुरुष हैं या पेड़ हैं या कीड़ा हैं, इसलिए भगवान भुला देते हैं, पागल हो जाएंगे, एक्चुअली पागल हो जाएंगे। यस, और मान लीजिए पिछले जन्म में किसी ने मेरा मर्डर किया हो तो अच्छा, और मान लीजिए किसी ने कोई याद हो जाए कि पिछले जन्म में मैं राजा था, अब मैं बिल्कुल भिखारी हूं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए भगवान बुला देते हैं। इसे ये जरूर सीख लेना चाहिए कि ये मेरा जीवन केवल एकमात्र जीवन नहीं है, यही एकमात्र जीवन नहीं है, और उसमें पूरी अपनी चेतना को निवेशित कर देना उचित नहीं है। केवल इट्स लाइक अ स्टेप ओनली, वो बोलते हैं वसुदेव जी से, एक आदमी पांव रखता है फिर दूसरे पांव को जमाता है फिर दूसरा पांव आगे रखता है, ऐसे करके हमारे शरीर में ये चीज भी हम सीखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा इस जगत में। और भगवान इसको बहुत सराहते हैं, कहीं भी आपको निंदा मिलेगी, कभी आपको स्तुति मिलेगी, उसी चीज के लिए कुछ लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, उसी चीज के लिए कोई व्यक्ति निंदा करेगा, इससे व्यक्ति को ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। भगवान आप देखिएगा 12वें अध्याय में बहुत प्रशंसा करते हैं, तुल्य निंदा सतिर मौनी संतुष्ट ये न केनचित, सब हमारे कर्म की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। खैर, आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार के साधन में, पढ़िए चलो मैं पढ़ लेता हूं। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। इसको हमने चर्चा कर लिया था कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है इसलिए कड़वा लगता है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और समाधि का और जीवन का सुख प्राप्त करता है। भाव का एक स्तर है, उसमें एक गुण है नाम गाने सदा रुचि। सदा मतलब, ये तो मुझे भी पता है, समाधि मतलब ऑलवेज, लेकिन सदा का मतलब विचार कीजिए, सदा का मतलब क्या है? सोते जागते खाते बाथरूम जाते हमेशा हरे कृष्णा बोलेंगे और हमेशा टेस्ट मिलेगा, ये भाव की स्थिति है। कितनी सुंदर और कितना टेस्ट होगा, मोक्ष लघुताकृत, इतना सुख है कि भाव के स्तर पे वो मोक्ष को भी रिजेक्ट कर देता है, मुख्य नहीं चाहिए, क्या करना, और हमेशा मिलेगा, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें भक्ति करते रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा भक्ति करते हुए। मैं हमेशा इस बात को विचार करता हूं कि एक ना एक दिन कभी हम पहुंच जाएंगे, और भाव छोड़ दीजिए, निष्ठा के बाद, निष्ठा के स्तर पे भी आपका रोज भजन बढ़िया होगा, ये कोई टेंशन नहीं होगी कि आज जब आपका अच्छा नहीं हो रहा है, रोज ही अच्छा होगा, और फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, निष्ठा आसक्ति रुचि भाव। कब मिलेगा भगवान? पक्का मिलेगा, ये तो 100% बात है, क्योंकि अब आ गए भक्ति में तो मिलना ही है, अगर हम भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे रहें तो। कभी विचार कीजिएगा उसके ऊपर कि कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, केवल हरे कृष्णा बोलना है और सुख मिलना चालू।
बता रहे थे कि अगर किसी को अपने पिता की संपत्ति का लेना है, बारिश होना है, तो उसको जीवित रहना होगा, लगे रहना होगा, अपने आप जब वो संपत्ति वो ट्रांसफर हो जाए।
यस, और इसमें श्रीदा स्वामी कहते हैं कि जीवित वही व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान, नहीं तो उसका जीवन कैसा है एक्चुअली। नहीं, मैं गलत बोल गया, श्रीदा स्वामी ने श्रुतियां बोलती हैं 1087 में, श्लोक में नंबर भूल रहा हूं, 87 वेद स्तुति में श्रुतियां बोल रही हैं कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वही जी रहे, अन्यथा उनका सांस लेना कैसा है, धौंकनी के, हाँ धौंकनी जैसा। वैसे सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, धौंकनी मतलब लोहार का जो पंप होता है जिससे वो हवा भरता है। अब नेट पे सर्च कर लेना, गूगल पर बताएंगे। तो इस प्रकार से, तो यानी जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए कितना आसान है ना, बस भाव की स्थिति को प्राप्त हो जाए, भाव और प्रेम जागृत हो जाए, तो हर भक्ति का कार्य आपको सुख प्रदान करेगा, लेकिन उसका एक प्राइस है, और प्राइस है कि हम भक्ति करते रहें, अभ्यास करते रहें। हाँ, वो आत्मलेंद्रित है लिखा हुआ है, आत्म केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अब हम राजसिक सुख के बारे में बात करेंगे, बहुत ईजी है। विषय इंद्रिय संयोगा अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। एक सिंपल सी बात सोचिए, जब गीता क्लास होती है, हरि नाम होता है, जब करते हैं, तो हम घड़ी क्यों देखते हैं बार बार? ये स्पष्ट है कि ये दिखाता है कि कड़वा लग रहा है, सिंपल सी बात है। और बहुत लोग देखते हैं, आप कल जप में देखिए, सब लोग, कुछ लोग तो 5:30 से ही घड़ी देखना चालू कर देते हैं, बैठे माला लेके घड़ी देखना चालू, 5:30 बजे घड़ी देखते हैं, अच्छा कितना समय हो गया। ये बताइए कि प्रसादम हॉल में हम घड़ी कब देखे लास्ट टाइम? खैर, वो भी भगवान का भक्ति ही है, लेकिन प्रजल्प करते हुए घड़ी कब देखे? कभी नहीं देखे। तो ये सारी चीजें बड़ी अमृतमय लग रही हैं, इसलिए लिखा हुआ है। हमारे गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं कि भक्त लोग भी आपस में बैठकर खूब बातें कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र लेकर के बैठना और चर्चा करना ये बहुत मुश्किल है। आप देखिए, मैं यहां पे जरा सा भी डेविएट होऊंगा तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, नहीं प्रभु जी तो सब शास्त्र की बात नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, मैं कल भी इस बात को बोल रहा था कि हम अपने प्रवचन में बहुत सारे मजाक चुटकुले सुना सकते हैं और लोगों को लगेगा बड़ी अच्छी लग रही क्लास, लेकिन वो क्लास शुद्ध करने वाली नहीं होगी उनको। खैर, हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। विषय इंद्रिय संयोगात, विषयों का इंद्रिय से जो संयोग होता है उससे प्रारंभ, विषय इंद्रिय संयोग आद्य, उससे शुरू होने वाला जो सुख है, अग्रे अमृतोपमम, जो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, परिणाम विषमेवा, लेकिन बाद में इसका परिणाम कैसा होता है, विष जैसा होता है, दुख होता है, वैसा सुख जो है राजसिक कहा जाता है। स्पष्ट है क्या अर्थ है उसको हम पढ़ेंगे। अनुवाद, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। एक और दिक्कत है कि जो व्यक्ति साधना करने आता है उसको ये सुख का अनुभव है पहले से, तथाकथित सुख का, तो जब वो भक्ति करने लगते हैं तो तुरंत भक्ति का सुख मिलता नहीं है, तो इसलिए वो स्टेज बड़ी डिफिकल्ट है। भक्ति का पूर्ण सुख मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं कि नाम में और भागवत में डूबे हुए हैं और ये संस्कार बने हुए हैं। सबने अनुभव किया है कि नहीं, रजोगुणी सुख के संस्कार बने हुए हैं, इसलिए भक्त संघ की नितांत आवश्यकता है जो हमको सपोर्ट देता रहे, हम भक्ति कर सके, नहीं तो भोग की तरफ हमारा मन भागना है, हमारे इंद्रिय भागना है, तो स्वाभाविक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ बोलिए।
कहते हैं और मुझे भी अनुभव है कि शुरुआत में भगवान जो थोड़ा सुख देते हैं भक्तों को।
हाँ ये बात सत्य है,
भक्ति नहीं आती लेकिन कोई प्रोसेस भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा सुख मिलता है। नारद जी के केस में भी भगवान कहते हैं कि मैं थोड़ा सुख दे रहा हूँ।
यस,
तो थोड़ा देते
शुरुआत में भगवान देते हैं ट्रेलर के रूप में, थोड़ा व्यक्ति जो है मतलब उसको सुख मिल जाए, अच्छा लगे, और उसके बाद उसको अभ्यास करना पड़ेगा ताकि उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो, तब उसे प्रॉपर सुख प्राप्त हो। नारद मुनि के बारे में बोल लेते हैं। ओके ठीक है। वह सुख जो इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात संयोगाद्य, जैसे सुंदर रूप या स्पर्श करने की कोई वस्तु जो प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है और जिसका उपभोग किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो दुख किससे भरा होता है और जहर के समान बन जाता है और जो व्यक्ति को नर्कगामी बनाता है, ऐसा सुख रजोगुण में होता है। जिसमें कुछ समझाना नहीं है, एक उपमा से आप समझ सकते हैं कि अचार खाने में अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन केवल यहां तक, उसके बाद यहां से जलाना चालू करता है कि नहीं करता। कितनी मसाले वाली सब्जी होती है, वो सोचता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, गोलगप्पे खाऊंगा, सब मैं बोलूंगा भी तो लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा शायद, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केवल जीभ तक अच्छा लगता है, उसके बाद जलना चालू होता है। तो इसी तरह से रजोगुणी सुख शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पूरा दुख में परिणत हो जाता है। अनंत कृष्ण प्रभु तात्पर्य पढ़िए, माइक है आपके पास, माइक दीजिए। प्रभुपाद जी इसी बात को एकदम खोल खोल के बताएंगे।
जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियाएं युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे।
देखिए एक बात, इससे हमें क्या सीखनी है, हम कल सुबह जब जप करें तो ऐसे ना बैठें कि हम लोग, अगर अपने मंदिर की बात करें कि हम साउथ डायरेक्शन में जाएं, साउथ मतलब दक्षिण दिशा, समझ गए,
भगवान से दूर,
समझ गए ना, कोर्टयार्ड में भी जाएंगे तो फिर देखो दक्षिण दिशा में माताजी लोग प्राय बैठे रहते हैं, और ये सोचना कि हम परमहंस हैं, नहीं परमहंस तो नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा, अच्छे भक्त हैं आप लोग, परमहंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अपने इंद्रियों को, क्योंकि यहां पे इंद्रिय लिखा है, इंद्रियों को उधर उन्मुख करें, तुलसी जी की तरफ या जो हरि नाम लिखा हुआ उस तरफ। कभी भी इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए इंद्रियों पे, मन पे, हरंती प्रसभम मना। कई बार मैंने भक्तों को इसलिए बोला है कि आप लोग ऐसे ऐसे ना बैठे कि आप लोग का जो आंखें हैं, मन है, सॉरी मन की बात नहीं करूंगा, आंखों या फेस है, वो माता जी जहां जप कर रहे हैं उधर देखें। बहुत मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कभी मन पे विश्वास मत कीजिए, जिस दिन मन पे विश्वास किया उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है ऐसे बैठे कि तुलसी जी देखें और हरि नाम दिखे, वैष्णव दिखे, सन्यासी जो भक्त लोग हैं वो दिखे, ये घृणा की भावना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी इंद्रियों पे हमें पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके।
प्रारंभ में
बोला जा रहा है, पढ़िए।
प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विश्व तुल्य बन जाता है जब वे बिलग हो जाते हैं।
बता रहे थे उदाहरण की कोई स्त्री पुरुष की शादी होगी तो बस 24 घंटे वो एक ही दूसरे को बातें करेंगे, देखेंगे, और कुछ समय के बाद देखा वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से युद्ध करने लग जाते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण एक आधार है। देखिए, पहले जमाने में जो शादी होती थी तो उसका आधार सेवा होता था, पत्नी को ट्रेनिंग दी जाती थी कि पति की सेवा करनी, और अब क्या आधार है? केवल भोग। जैसे भागवत में बताया गया ना, जब तक रति सुख मिलने का एक्सपर्ट होगा तब तक रखेंगे, संबंध रखेंगे, नहीं तो फिर काट देंगे। ये सब कुछ रजोगुण पर आधारित है, इसीलिए इसका परिणाम संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद में होता है। पढ़िएगा आगे।
जब वे बिलग हो जाते हैं या उनमें तलाक मतलब विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए।
क्या आप में से किसी को वो श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार का इंद्रिय विषयों का संग दुख का कारण है?
यही समय स्पर्शा भोगा
यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नया एवते आद्यंत वंत कौंते या नते शुरू मते बता। थोड़ा सा विचार किया जाए, इंद्रिय विषयों का सुख, उससे पहले क्या आता है? इच्छा। अब जब भोग मिल गया तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, भोग प्रचुर मात्रा में नहीं मिला, और अगर प्रचुर मात्रा में मिल गया, मिल भी जाए तो मेरी शक्ति समाप्त हो गई भोगने की, और उसके बाद भोग का संस्कार बन गया। एग्जाम्पल के लिए रसगुल्ला, पहली बात रसगुल्ले की इच्छा, वो दुख देगी, नहीं मिल रहा तो तक कष्ट हो रहा है। जब रसगुल्ले मिले तो रसगुल्ले केवल लिमिटेड थे तो वो दुख, और अगर अनलिमिटेड हैं तो खाने की शक्ति सीमित है। ये अपने अनुभव किया है कि नहीं? और उसके बाद छाप पड़ गई, रसगुल्ला फिर से खाना है। तब देख रहे हैं कि विषयों का भोग करने से इस प्रकार का पूरा प्रोसेस, शुरुआत में दुख आया था और बाद में भी दुख मिला हमको, बीच में हल्का सा अनुभूति, आद्यंत वंत कौन थे, शुरुआत थोड़ी सी लगता है और बाद में अंत हो जाता है सुख का, हम असंतुष्ट रह जाते। तो इस प्रकार से हमारा जो रजोगुणी सुख है वो अंततोगत्व दुख में परिणत हो जाता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, उससे दूर रहना चाहिए। क्या बोलते हैं भगवान? नतेषु रमते बुध। ठीक है, यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। सोने में मजा आता है कि नहीं? वो जो आनंद है सोने का, वो क्या है? तमोगुणी सुख है। इसका अर्थ नहीं कि हम सोएंगे नहीं, लेकिन जो सोने में ही आनंद लेता है वह तामसिक हो गया। ज्यादा सोने की दिक्कत है, थोड़ा तो आनंद लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सुख जो शुरुआत से ही अर्थात अग्रे और अपनी पूर्णता में भी आत्मा के लिए केवल मोह का ही निर्माण करता है और वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है अर्थात मोहनात्मनः, और जो नींद आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तमोगुण में कहलाता है। ऐसा कौन सा सुख है जो वस्तुओं को ढक लेता है प्रैक्टिकल लेवल पे?
सोने को तो
निद्रा, सोना तो है, और
आलस।
शराब पीना, शराब पीना कौन सा, शराब कौन सी शुरुआत में कैसी लगती है अनंत कृष्ण प्रभु शराब?
अच्छा,
तब महसूस कर सकते हैं बदबूदार होती है और मैंने सुना कड़वी भी होती है, और इवन सिगरेट लोग पीते हैं वो धुआं फूंक रहे हैं अंदर, क्या सुख है उसमें? शुरुआत में कोई सुख नहीं है, बाद में भी बहुत कष्ट है और अज्ञान बढ़ता है। मैं तो इसका अर्थ यहीं पे ले रहा हूं, क्योंकि प्रायः शराब इत्यादि को पीने को तमोगुण ही माना जाता है, तो या फिर अगर आप मांस खाने की बात करें तो ये सब चीजें जो
है वो प्रमाद में आ रहा है। प्रमाद मतलब
नहीं, प्रमाद का अर्थ थोड़ा सा अलग लिया गया है, प्रमाद का थोड़ा अलग, प्रमाद मतलब पागलपन होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग यहाँ पे लिया गया है। तो यही है कि मोह उत्पन्न करने के लिए, कुछ पता नहीं क्यों कर रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं। ठीक है, आलस्य का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों को करने में थकावट। यस, ये तो समझते हैं, कुछ काम करना है और आप देखेंगे जब हमारा चित्त तमोगुण से प्रभावित होता है तो कार्य बहुत सिंपल होता है, और आप भी जानते हैं बहुत सिंपल कार्य है, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रभु जी बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कार्य बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन हमारा कहीं अंदर से कचोट रहती है कि हम उसको कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो उसे हमें समझ में आना चाहिए तमोगुण का लक्षण। ऐसा हुआ है अनुभव? आपके अथॉरिटी बोलेंगे आपने क्यों नहीं किया, आप बहुत सारे बहाने बोलेंगे, लेकिन बहाने हमारा केवल यही है, मुख्य कारण क्या है? तमोगुण की वजह से नहीं किया। जो एक घंटे में कार्य हो सकता है उसको एक साल में करेंगे, और कुछ कुछ कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फ्री हूं, ये हमें मतलब डायग्नोस करना चाहिए ये सब क्या हो रहा है, तमोगुण की वजह से हो रहा है, तो मुझे जीतना है, ऐसे आगे बढ़ना है। प्रमाद का अर्थ है जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान ना देना, मतलब ध्यान ना देना की भावना को प्रमाद बोला जा रहा है। यही चीज जप में भी आती है, जब प्रमाद बोला जाता है, भगवान आ रहे हैं, राधा रानी हमारी जीव पे आ रही है, और मन को कहीं और हम लेके जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ये प्रमाद है। समझ में आया कि नहीं आया? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मतलब बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो गए हम। अगर वापस हरे कृष्ण सुनने का प्रयास कर रहे हैं, मन भाग रहा है, वो प्रमाद नहीं है। हरे कृष्ण टीवी देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब कोई मतलब ही नहीं कि हरे क्या कर रहे हैं। हाँ, मशीन फिट कर दी, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे।
लेकिन भक्ति के कार्य को हम प्रमाद में कैसे ला सकते हैं?
भक्ति के कार्यों को प्रमाद में नहीं लाया जा रहा, जैसे कर रहे हैं उसको प्रमाद में लाया जा रहा है। जब हम हरि नाम जब कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हरि नाम चिंतामणि में इस बात को लिखा है, ये एक अपराध है। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। कभी कभी लोग ये भी नहीं देखते हैं कि महामंत्र पूरा बोल रहे हैं कि नहीं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। क्या फल आएगा? मैं अब मेरी, अब आप लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं तो मेरी इच्छा हो रही है बताने की, हरि नाम चिंतामणि में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आप क्या फल चाहते हो नाम से? प्रेम चाहते हो तो फिर ठीक से करना पड़ेगा, प्रेम चाहते हैं तो नियम का पालन करना पड़ेगा।
या विभेति स्वयं भयम्, ऐसे लोग आते हैं, उससे पहले आता कोई अनकॉन्शियस,
लेकिन प्रेम नहीं लिखा उसमें, उसका मुक्ति हो जाएगी, उसको नरक में जाना पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं होगा। एकदम स्पष्ट रूप से हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, प्रेम के लिए आदर पूर्वक, पढ़ा था ना हमने, आदर पूर्वक अनुनिदम, रूप गोस्वामी जी इस बात को बोल रहे हैं, अनुनिदनम अनुनिदनम, रोज करना है और आदर पूर्वक करना, ये आदर है। हरे हरे राम राम हरे हरे है, तो ठीक है, हरे हरे राम राम हरे हरे, ये आदर है। तो अब हम उसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं ये देखना चाहिए, मुक्ति या पापों से निवृत्ति, ये एकदम तुच्छ फल है नाम का, ये तो अपने आप ही मिलता है, इसमें कोई ये अनुसंगिक फल है, मुख्य चीज है भगवत प्रेम की प्राप्ति। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अंतर नहीं दिख रहा है, जो लोग एकाग्रता से नाम जप करते हैं या जिन भक्तों ने एकाग्रता से करना शुरू कर दिया है, वह भी महसूस करते हैं कि उनकी चेतना में कितना अंतर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये मतामत का विषय है या कोई इसमें कोई तर्क का विषय, कोई विषय नहीं है। हाँ जी,
व्यवहार में भी देखते हैं, जैसे हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, अगर हम किसी चाहते हैं प्रेम तो yes. उनसे प्रेम से पूर्वक बात करना पड़ेगा।
यस, प्रेम पूर्वक बात करना पड़ेगा, और उससे पहले है अटेंशन। अब आप सिंपल सा बात लीजिए, अगर आप सब लोग, ऐसे कोई नहीं कर रहा, सब लोग व्हाट्सएप चेक करने लग जाएं और मैं क्लास दे रहा हूं, हाँ हाँ बोलते रहिए, अच्छा बोल रहे हैं, दिक्कत फर्स्ट क्लास, तो कब तक हम उसको कोई संबंध नहीं हो रहा है ना, संबंध मतलब है कि उसमें टेंशन होना चाहिए, कुछ नहीं ऊंचा होगी, अनुभव है, भक्तों के संग गए थे कार्यक्रम करने, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए।
व्यक्ति
जो है वो बीच में व्हाट्सएप चेक करने लगता है. Exactly. तो सारा जो है पॉइंट ही चला जाता है, सारा उत्साह ही चला जाता है, मैं क्या बोलूं.
लोग स्टॉप कर देते हैं, लोग स्टॉप कर देते हैं, बात नहीं करते आपसे. आप देखिएगा कभी आप व्हाट्सएप चेक करने लग जाएंगे, तुरंत बंद कर देते हैं अपनी बात. तो यहाँ पे ये प्रमाद है और इस चीज को बड़ा शास्त्र के लिए डिफाइन किया गया है. कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा कर सकते हैं इनअटेंशन और ये सारे अनर्थों का बढ़ाने का कारण है. ध्यान देना चाहिए. इसका अर्थ ये नहीं है कि मन भाग रहा है तो वो प्रमाद है. अर्थ ये है कि जानबूझ करके ध्यान न देना. एकदम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम करते हैं लोग ऐसा. कभी कुछ किश निश 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 करते रहते हैं तो सब क्या है. हाँ कुछ भी बहुत सारे तरीके से करते रहते हैं तो उससे बचना चाहिए. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तात्पर्य मैं पढ़ लेता हूं. जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमगुणी है. जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमगुणी है. ये हमने भी पढ़ लिया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम या मोह हैं. उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में. रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है. ठीक है, मुझे उदाहरण और बहुत स्पष्ट याद नहीं आ रहा. कोई अगर प्रैक्टिकल लाइफ से उदाहरण आपको याद आ रहा हो तमोगुण का, तो जिसमें शुरुआत में भी दुख मिलता हो और बाद में भी दुख मिलता हो. जैसे एक उदाहरण, एक नहीं हटियोग तमोगुण में नहीं, एक इंटरेस्टिंग है. जैसे उग्रवादी खूब घोर परिश्रम करते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है, जाके मर भी जाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ जन्नत मिलेगी. क्या उन्हें जन्नत मिलेगी? नरक मिलेगा. तो शुरुआत में भी घोर कर्म कर रहे हैं, कष्ट मिल रहा है और बाद में अंत क्या हुआ, कष्ट प्राप्त हुआ, दुख प्राप्त हुआ. जैसे कि जन्नत का मतलब होता है उनके हिसाब से स्वर्ग. वो कहते हैं हिंदुओं को मारेंगे या जो सामान्य मासूम लोगों को मारेंगे तो फिर हम लोग जो है जन्नत प्राप्ति करेंगे. तो इस जन्नत नहीं मिलेगी उनको, यमलोक मिलेगा. लेकिन और उसके करने के लिए भी कितना परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को कितना कष्ट देते हैं. तो ये शुरुआत में भी कष्ट तमोगुण और आगे जाके भी कष्ट. जो घनघोर तपस्या करते हैं अगर भगवत विमुख है तो कुछ नहीं मिलता, केवल शरीर सूखेगा. जैसे कि हम देखते हैं वृकासुर परफेक्ट एग्जाम्पल है. मांस काट काट के दे रहा है और मिला क्या बाद में, अपने सर पे हाथ रखा और फट गया. आप लोग कुछ प्रश्न माइक पे क्यों नहीं करते? अरे इतना ऐसे सबके पास स्टैंड लगाना पड़ेगा ना क्या? हाँ बोलिए, अब बोलना नहीं जब माइक आ जाता. ठीक है फिर रुकते हैं, कुछ बोलना नहीं था. श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.